नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है, भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। ये औसत भारतीय नागरिक को ध्यान में रखकर दिया गया था, तो इसे समझना आसान होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर गायत्री मंत्र के अर्थ और भारतीय संस्कृति में इसकी जगह को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो गुरुदेव कहते हैं वो माँ के बारे में है, जन्म देने वाली माँ जिसका कोई मुकाबला नहीं, अपने खून से दूध से हमें पालती है।
जी हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ ना पूज्य गुरुदेव एक और माँ का जिक्र करते हैं, माँ गायत्री। उन्हें आध्यात्मिक कामधेनु भी कहा गया है। जैसे आपने कहा जन्म देने वाली माँ शरीर पालती है, पर गायत्री माँ वो आत्मा का पोषण करती है। जैसे कहते हैं ना कामधेनु का दूध देवताओं को दिव्य बनाता था, वैसे ही ये गायत्री रूपी कामधेनु है जो धरती पर मनुष्यों को फायदा पहुंचा सकती है। इसे क्या कहा गया?
भारतीय संस्कृति की आत्मा, ऋतम भरा प्रज्ञा, विवेकशीलता। अच्छा, ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है, आत्मा का पोषण। और ये विचार भी कितना गहरा है कि जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ समाया होता है, वैसे ही ये जो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, इसमें पूरी सृष्टि का दिव्य ज्ञान विज्ञान है।
हाँ बिल्कुल, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। उद्बोधन में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि बनानी थी तो उससे पहले ज्ञान और शक्ति पाने के लिए गायत्री की ही तपस्या की थी, और इसी मंत्र से जो शक्ति मिली उसी से सृष्टि रची, और फिर उन्होंने मंत्र को चार हिस्सों में बांटा और उनसे चार वेदों की रचना की।
चार वेदों की?
जी हाँ, ओम भूर भुवः स्वाह से ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद, फिर भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद, और धियो योना प्रचोदयात से अथर्ववेद।
अरे वाह, मतलब हमारे जो वेद हैं, जो संस्कृति के आधार हैं, वो भी गायत्री मंत्रों से ही निकले हैं। ये तो कमाल की बात है। और फिर ये भी कि 24 अवतार, 24 पुराण, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक, देवी भागवत, ये सब गायत्री के ही अलग अलग रूप या विस्तार हैं।
सही समझ रहे हैं आप, ये सब उसी एक मूल स्रोत के विभिन्न पहलू हैं, उसकी व्याख्याएं हैं। और इसे सिर्फ मतलब ज्ञान तक ही नहीं रखा गया, व्यवहारिक रूप भी दिए गए। जैसे सिर पर शिखा रखना, वो विचारों पर एक तरह का अंकुश, एक मर्यादा का प्रतीक है। और कंधे पर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ,
हाँ जनेऊ
जी, उसके तीन धागे गायत्री की तीन व्याहृतियां दिखाते हैं, भू भुवः स्वः। और जो नौ तार होते हैं वो मंत्र के नौ शब्दों के प्रतीक है। ये सब क्या याद दिलाते हैं? हमारे सामाजिक कर्तव्य, हमारी मर्यादाएं। इसीलिए इसे गुरु मंत्र भी कहते थे, क्योंकि पहले पारंपरिक शिक्षा इसी से शुरू होती थी।
जब इतना महत्वपूर्ण था, जीवन का हिस्सा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे भुला दिया गया? एक समय ऐसा क्यों आया?
हाँ, ये एक दुखद पहलू है, एक अंधकार युग का जिक्र आता है, जब भारत ने अपनी बहुत सी चीजें खो दी, और उसी में ये अपनी आध्यात्मिक माँ की पहचान भी धुंधली हो गई। हुआ ये कि इसे कुछ खास वर्गों तक सीमित कर दिया गया, स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं दिया गया, ऐसी बातें कही गईं, और तो और इस पर शाप लगा है या कीलन है, ऐसी गलत फहमियां फैलाई गईं। नतीजा, भारतीय संस्कृति की जो जड़ थी वो कमजोर पड़ गई।
ये तो बड़ी अजीब बात है, खासकर जब महात्मा गांधी जैसे लोग भी, मैंने पढ़ा था उन्होंने जामिया मिलिया में कहा था कि ये किसी एक धर्म का नहीं, ये तो विश्वानों का मंत्र है, मानवता को जगाने वाला।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव भी इसे दो तरह से देखते हैं। एक तो ये फिलॉसफी है, मतलब जीवन जीने की कला, सोचने का एक सही तरीका, और दूसरा ये एक साइंस है, एक विज्ञान, जिससे अंदर की शक्तियां जागती हैं, जिससे मनुष्य देवता बन सकता है, यानी अपने अंदर दिव्यता ला सकता है।
यहाँ एक शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, पात्रता या मैच्योरिटी, कि जैसे बच्चे को उसकी समझ के हिसाब से ही चीजें दी जाती हैं, वैसे ही गायत्री या अध्यात्म का पूरा लाभ लेने के लिए इंसान में कुछ गुण होने चाहिए, है ना?
जी हाँ, बिल्कुल सही, पात्रता बहुत जरूरी है। और यहाँ मैच्योर होने का मतलब सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, मानवीय जिम्मेदारियां, चरित्रवान बनना। गुरुदेव इसे ब्राह्मण जीवन कहते हैं, मतलब किफायत से रहना, सादगी और नेकी का जीवन, और साथ ही उदार बनना, जिसे वो संत जीवन कहते हैं, करुणा और सेवा। तो सिर्फ मंत्र पढ़ लेना काफी नहीं है, जीवन में ये गुण उतारने पड़ेंगे। जैसे बीज तो हो, पर अच्छी जमीन और खाद पानी भी तो चाहिए ना।
सही बात है, बीज के साथ खाद पानी। तो अगर कोई ये पात्रता विकसित करें और साधना करें तो नतीजा क्या होता है, क्या लाभ मिलते हैं?
पूज्य गुरुदेव अपने अनुभव से तीन खास लाभ बताते हैं। पहला, आत्मसंतोष, अंदर से एक शांति, एक संतुष्टि, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों। दूसरा, दूसरों से सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, लोग इज्जत करते हैं, मदद करते हैं। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, देवताओं का अनुग्रह यानी ईश्वरीय कृपा, अदृश्य मदद मिलती है।
गुरुदेव ने खुद 24 साल कठोर तपस्या की, जौ की रोटी और छाछ पर रहे, लेकिन साथ साथ उन्होंने नेकी और सेवा का जीवन भी जिया। वो पात्रता उन्होंने खुद जीकर दिखाई।
तो ये सिर्फ कोई धार्मिक मंत्र नहीं है, ये तो एक पूरा जीवन दर्शन है, एक विज्ञान है, आत्म विकास का रास्ता है, और यही भारतीय संस्कृति की जड़ है।
बिल्कुल,
आपने सार पकड़ लिया। ये एक बहुत शक्तिशाली बीज है, गायत्री मंत्र, लेकिन इसकी पूरी शक्ति पाने के लिए सिर्फ जाप का पानी काफी नहीं है। चरित्र, उदारता, जिम्मेदारी, इस सबसे भरी हुई मैच्योरिटी यानी पात्रता की उपजाऊ जमीन तैयार करनी ही होगी।
और शायद यहीं पर आज की बातचीत का एक अहम सवाल छुपा है। क्या आज हम सब उस पात्रता को, उस मैच्योरिटी को विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं, या सिर्फ फल पाने की इच्छा रख रहे हैं, ताकि इस प्राचीन ज्ञान का जो वास्तविक लाभ है वो हमारे जीवन में सचमुच उतर सके? सोचने वाली बात है।